रात के 8 बजे थे। ज्ञानशंकर के दीवान खाने में शहर के कई प्रतिष्ठित सज्जन जमा थे। बीच में एक लोहे का हवन कुंड रखा हुआ था, उसमें हवन हो रहा था। हवन कुंड के एक तरफ गायत्री बैठी थी, दूसरी तरफ ज्ञानशंकर और माया। एक पंडित जी वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे। गायत्री का चंपई वर्ण अग्नि ज्वाला से प्रतिबिंबित होकर कुंदन हो रहा था। फिरोजी रंग की साड़ी उस पर खूब खिल रही थी। उसकी आंखें उसी के मुख दीपक की ओर लगी हुई थी। यह माया को गोद लेने का संस्कार था। वह गायत्री का धर्मपुत्र बन रहा था। कुछ सज्जन आपस में कनाफूसी कर रहे थे। कैसा भाग्यवान लड़का है, लाखों की संपत्ति के स्वामी बन जाता है। यहाँ आज तक एक पैसा भी पड़ा हुआ न मिला। कुछ लोग कह रहे थे, ज्ञानशंकर एक ही बना हुआ आदमी है, ऐसा हाथे पर चढ़ाया कि जायदाद लेकर ही छोड़ी। अब मालूम हुआ कि महाशय ने यह स्वांग किस लिए रचा था। यह जटाएं इसी दिन के लिए बढ़ाई थी। कुछ सज्जनों का मत था कि ज्ञानशंकर इससे भी कहीं मलिन हृदय है। लाला प्रभाशंकर ने पहले प्रस्ताव सुना तो बहुत बिगड़े, लेकिन जब गायत्री ने बड़ी नम्रता से सारी परिस्थिति प्रकट की तो वह भी नीमाराजी से हो गए। हवन के पश्चात दावत शुरू हुई। इसका सारा प्रबंध उन्हीं के हाथों में था। उनकी अर्ध स्वीकृति को पूर्ण बनाने का इससे उत्तम कोई अन्य उपाय न था। उन्हें पूरा अधिकार दे दिया गया था कि वह जितना चाहे खर्च करें, जो पदार्थ चाहे पकवाएं। अतएव इस अवसर पर उन्होंने अपनी संपूर्ण पाक कला प्रदर्शित कर दी थी। इस समय खुशी से उनकी बाँछें खिली जाती थी। लोगों के मुँह से भोजन की सराहना सुन सुनकर फूले न समाते थे। कितने ही ऐसे सज्जन थे जिन्हें भोजन से नितांत अरुचि रहती थी। कुछ ऐसे थे जो दावतों में शरीक होना अपने ऊपर अन्याय समझते थे। ऐसे लोग भी थे जो प्रत्येक वस्तु को गिनकर और तोड़कर खाते थे, पर इन स्वादयुक्त पदार्थों ने तीव्र और मंद अग्नि में कोई भेद न रखा था। रुचि ने दुर्बल पाचन शक्ति को भी सबल बना दिया। दावत समाप्त हो गई तो गाना शुरू हुआ। अलादीन 1-7 वर्ष का बालक था, लेकिन गान शास्त्र का पूरा पंडित और संगीत कला में अत्यंत निपुण। यह उसकी ईश्वर दत्त शक्ति थी। जल तरंग, ताऊ, सितार, सरोद, वीणा, पखावज, सारंगी सभी यंत्रों पर उसका विलक्षण आधिपत्य था। इतनी अल्पावस्था में उसकी यह अलौकिक सिद्धि देखकर लोग विस्मित हो जाते थे। जिन गायनाचार्यों ने एक एक यंत्र की सिद्धि में अपना जीवन बिता दिया, वह भी उसके हाथों की सफाई और कोमलता पर सिर धुनते थे। उसकी भव्यता उनकी विशेषता को लज्जित किए देती थी। इस समय समस्त भारत में उसकी ख्याति थी, मानो उसने दिग्विजय कर लिया हो। ज्ञानशंकर ने उस उत्सव पर उसे कलकत्ते से बुलाया था। वह बहुत दुर्बल कुत्सित कुरूप बालक था, पर उसका गुण उसके रूप को भी चमत्कृत कर देता था। उसके स्वर में कोयल की कूक सा माधुर्य था। सारी सभा मुग्ध हो गई। इधर तो यह राग गंगा था, उधर विद्या अपने कमरे में बैठे हुए भाग्य को रो रही थी। तबली की एक एक थाप उसके हृदय पर हथौड़े की चोट के समान लगती थी। वह एक गर्वशीला, धर्मनिष्ठा, संतोष और त्याग के आदर्श का पालन करने वाली महिला थी। यद्यपि पति के स्वार्थ भक्ति से उसे घृणा थी, पर इस भाव को वह अपनी पति सेवा में बाधक न होने देती थी। पर जब से उसने राय साहब को मुंह से ज्ञानशंकर के नैतिक अधःपतन का वृत्तांत सुना था, तब से उसके पति श्रद्धा क्षीण हो गई थी। रात को लज्जास्पद दृश्य देखकर पची खुशी श्रद्धा भी जाती रही। जब ज्ञानशंकर को रोते देखकर गायत्री दीवान खाने के द्वार तक आकर फिर उनके पास चली गई तो विद्या वहां न ठहर सकी। वह उन्माद की दशा में तेजी से ऊपर आई और अपने कमरे में फर्श पर गिर पड़ी। यह ईर्ष्या का भाव न था, उसमें अहित चिंता होती है। यह प्रीति का भाव न था, इसमें रक्त की तृष्णा होती है। यह अपने आप को जलाने वाली आग थी। यह वह विघातक क्रोध था जो अपना ही ओठ चबाता है, अपना ही चमड़ा नोचता है, अपने ही अंगों को दांतों से काटता है। वह भूमि पर पड़ी सारी रात रोती रही। अब मैं किसकी होकर रहूं? मेरा पति नहीं, मेरा घर अब मेरा नहीं। मैं अब अनाथ हूं, कोई मेरा पूछने वाला नहीं। ईश्वर, तुमने किस पाप का मुझे दंड दिया? मैंने तो अपने जानते किसी का बुरा नहीं चेता, तुमने मेरा सर्वनाश क्यों किया? मेरा सुहाग क्यों लूट लिया? यही मेरे पास एक धन था, इसी का मुझे अभिमान था, इसी का मुझे बल था। तुमने मेरा अभिमान तोड़ दिया, मेरा बल हर लिया। जब आग ही नहीं तो राख किस काम की? यह सुहाग की पोटारी है, यह सुहाग की डिबिया है, इन्हें लेकर क्या करूँ? विद्या ने सुहाग की पोटारी ताक पर से उतार ली और उसी आत्मवेदना और निराश की दशा में उसकी एक एक चीज खिड़की से नीचे बाग में फेंक दी। कितना करुणाजनक दृश्य था! आंखों से अश्रु धारा बह रही थी और वह अपनी चूड़ियां तोड़ तोड़कर जमीन पर फेंक रही थी। वह उसके निर्बल क्रोध की चरम सीमा थी। वह एक ऐश्वर्यशाली पिता की पुत्री थी। यहाँ उसे इतना आराम भी न था उसके मायके की महरियों को था, लेकिन उसके स्वभाव में संतोष और धैर्य था। अपनी दशा से संतुष्ट थी। ज्ञानशंकर स्वार्थ से भी थे, लोभी थे, निष्ठुर थे, कर्तव्यहीन थे, इसका उसे शोक था, मगर अपने थे। उनको समझाने का, उनका तिरस्कार करने का उसे अधिकार था। उनकी दुष्टता, नीचता और भोग लिप्सा का हाल सुनकर उसके शरीर में आग सी लग जाती थी। वह लखनऊ से दामिनी बनी हुई आई। वह ज्ञानशंकर पर तड़पना और उनकी कुवृत्तियों को भस्मीभूत कर देना चाहती थी और निर्व्यंग शेरों से छेदना और कटु शब्दों से उनके हृदय को वेदना चाहती थी। इस वक्त तक उसे अपने सुहाग का अभिमान था। रात के 8 बजे तक वह ज्ञान शंकर को अपना समझती थी, अपने को उन्हें कोसने की, उन्हें जलाने की अधिकारिणी समझती थी। उसे उनको लज्जित अपमानित करने का हक था क्योंकि वह अपने थे। हमसे अपने घर में आग लगते नहीं देखा जाता। घर चाहे मिट्टी का ढेर ही क्यों न हो, खंडहर ही क्यों न हो, हम उसे आग में जलते नहीं देख सकते। लेकिन जब किसी कारण से वह घर अपना न रहे तो फिर चाहे अग्नि शाखा आकाश तक जाए, हमको शोक नहीं होता। रात के निंद घृणित दृश्य ने विद्या के दिल से इस अपनेपन को, इस ममत्व को मिटा दिया था। अब उसे दुख या था तो अपने अभाग्य का, शोक था तो अपनी अवलंबहीनता का। उसकी दशा उस पतंग सी थी जिसकी डोर टूट गई थी अब, अथवा वह वृक्ष सी जिसकी जड़ कट गई हो। विद्या सारी रात इसी दुग्न दशा में पड़ी रही। कभी सोचती लखनऊ चली जाऊं और वहां जीवन छेप करूं, कभी सोचती जीत कर अब करना ही क्या है, ऐसे जीने से मरना क्या बुरा है। सारी रात आंखों में कट गई, दिन निकल आया, लेकिन उसका उठने को जी न चाहता था। इतने में श्रद्धा आकर खड़ी हो गई और उसके श्रीहीन मुख की ओर देखकर बोली, क्या आज सारी रात जागती रही, आंखें लाल हो रही है? विद्या ने आंखें नीची करके कहा, हाँ आज नींद नहीं आई। श्रद्धा, गायत्री देवी से कुछ बातचीत नहीं हुई? मुझे तो ढंग ही निराले दिखते हैं, तुम तो इतनी बड़ी प्रशंसा किया करती थी। विद्या, क्यों कोई नई बात देखी क्या? श्रद्धा, नित्य ही देखती हूँ, लेकिन रात को जो दृश्य देखा, जो बातें सुनी, वह कहते लज्जा आती है। कोई 11 बजे होंगे, मुझे अपने कमरे में पड़े पड़े नीचे किसी की बोलचाल की आहट हुई। डरी कि कहीं चोर ना आए, धीरे से उठकर नीचे गई, दीवान खाने में लपन जल रहा था। मैंने शीशे के अंदर झाँका तो मन में कट कर रहा गई, और तुमसे क्या कहूँ, मैं गायत्री को इतनी चंचल न समझती थी। कहाँ त्रिकृष्ण की उपासक करती है, भक्तिन बनती है, और कहाँ यह छिछोरापन। मैं तो उन्हें देखते ही मन में खटक गई थी, पर यह न जानती थी कि इतने गहरे पानी में है। विद्या, मैंने भी तो कुछ ऐसा तमाशा देखा था, तो मेरे आने के बहुत देर पीछे गई थी, मुझे लखनऊ में ही सारी कथा मालूम हो गई थी। इस भयंकर परिणाम को रोकने के लिए मैं वहां से दौड़ी आई, किंतु यहाँ का रंग देखकर हताश हो गई। ये लोग अब मझधार में पहुंच चुके हैं, इन्हें बचाना दुस्तर है। लेकिन फिर कहूंगी कि इसे गायत्री बहन का दोष नहीं, सारी करतूत इन्हीं महाशय की, जो जटा बढ़ाए पीताम्बर पाने भगत जी बने फिरते हैं। गायत्री बेचारी सीधी सादी सरल स्वभाव की स्त्री है, धर्म की ओर इसकी विशेष रुचि, इसलिए यह महाशय भी भगत बन बैठे और यह भेष धारण करके उस पर अपना मंत्र चलाया। ऐसा पापात्मा संसार में न होगा। बहन, तुमसे दिल की बात कहती हूँ, मुझे इनकी सूरत से घृणा हो गई है। मुझ पर ऐसा आघात हुआ कि मेरा बचना मुश्किल है, इस घोर पाप का दंड अवश्य मिलेगा। ईश्वर न करे मुझे इन आंखों से कुल का सर्वनाश देखना पड़े, और सोने की घड़ी होगी जब संसार से मेरा नाता टूटेगा। श्रद्धा, किसी की बुराई करना अच्छा तो नहीं है, और इसीलिए मैं अब तक सब कुछ देखते हुए भी अंधी बनी रही, लेकिन अब बिना बोले नहीं रह जाता। मेरा वश चले तो ऐसी कुटिलताओं का सिर कटवा लो। यह भोलापन नहीं है, यह आई है दिखाने के लिए, भोली बने बैठी हुई है। पुरुष 1000 रसिया हो, 1000 चतुर हो, 1000 घतिया हो, 1000 ढोरे डाले, किंतु सती स्त्रियों पर उसका एक मंत्र भी न चल सकता। वह आंखें क्या जो एक निगाह में पुरुष की चाल ढाल को ताड़ न ले। जलाना आग का गुण है, पर हरी लकड़ी को भी किसी ने जलते देखा है? 1000 स्त्रियों की जान है, इसके बिना वसूखी लकड़ी है। जिन्हें आग की एक चिंगारी जलाकर राख कर दे, इसे अपने पतिदेव की आत्मा पर भी दया न आई, उसे कितना क्लेश हो रहा होगा। इसके आने से मेरा घर अपवित्र हो गया। रात को दोनों प्रेमियों की बातों की भनक जो कान में पड़ी, उसे ऐसा कुछ मालूम होता है गायत्री माया को गोद लेना चाहती है। विद्या ने भयभीत होकर कहा, माया को? श्रद्धा, हाँ शायद आज इसकी तैयारी है, शायद वह नेवते भेजे जा रहे हैं। विद्या की आंखों में आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें दिखाई दी, जैसे मटर की फली के दाने होते हैं। बोली, बहन तब तो मेरी नाव डूब गई, जो कुछ होना था हो चुका, अब सारी स्थिति समझ में आ गई। इस धूर्त ने इसीलिए यह जाल फैलाया था, इसीलिए इसने यह वेश रचा है, इसी नियत से इसने गायत्री की गुलामी की थी। मैं पहले से ही डरती थी, कितना समझाया, कितना मना किया, पर इसे मेरी एक न सुनी। अब मालूम हुआ कि इसके मन में क्या ठनी है। आज 7 साल से यह इसी धुन में पड़ा हुआ है। अभी तक मैं समझती थी कि इसे गायत्री के रूप रंग बनाव चुनाव बातचीत ने मोहित कर लिया है। वह निंद कर्म होने पर भी घृणा के योग्य नहीं है। जो प्राणी प्रेम करता है वह धर्म दया विनय आदि सद्गुणों से शून्य नहीं हो सकता। प्रेम की ज्योति उसके हृदय को प्रकाशित करती रहती है, लेकिन जो प्राणी प्रेम का स्वांग भर कर उससे अपना कुटिल अर्थ सिद्ध करता है, जो टट्टी की आड़ में शिकार खेलता है, उससे ज्यादा नीच नराधम कोई हो ही नहीं सकता। वह उस डाकू से भी गया बीता है जो धन के लिए लोगों के प्राण हर लेता है। वह प्रेम जैसी पवित्र वस्तु का अपमान करता है, उसका पाप अक्षम्य है। मैं बेचारी गायत्री को अब भी निर्दोष समझती हूँ। बहन, अब स्कूल का सर्वनाश होने में विलंब नहीं है। जहाँ इतना अधर्म, इतना पाप, इतना छल कपट हो, वहाँ कल्याण कैसे हो सकता है? अब मुझे पिताजी की चेतावनी याद आ रही है। उन्होंने चलते समय मुझसे कहा था, अगर तूने ये आग न बुझाई तो तेरे वंश का नाश मिट जाएगा। आए मरे रोए खड़े हो रहे हैं, बेचारे माया पर क्या बीतेगी? यह हराम का माल, यह हराम की जायदाद उसकी जान की गाहक हो जाएगी, सर्प बनकर उसे डस लेगी। बहन, मेरा कलेजा फटा जाता है। मैं अपने माया को इस आग में से क्यों कर बचाऊँ? वह मेरी आँखों की पुतली है, मेरे प्राणों का आधार है कि निर्दयी पिशाच या बदिक मेरे लाल की गर्दन पर छुरी चला रहा है। उसे कैसे गोद में छिपा लूँ, कैसे हृदय में बिठा लूँ? बाप होकर उसे विष दे रहा है, पाप का अग्नि कुंड जलाकर मेरे लाल को उसमें झोंक देता है। मैं अपनी आंखों या सर्वनाश नहीं दे सकती। बहन, तुमसे आज कहती हूँ, मुन्नी के जन्म के बाद इस पापी ने मुझे न जाने क्या खिला के मेरी कोख खा ली, न जाने कैसे कैसे अनुष्ठान कर दिया। वही विष इसने पहले ही खिला दिया होता, वही अनुष्ठान पहले ही करा दिया होता तो आज यह दिन क्यों आता है? बाज रहना इससे कहीं अच्छा है, संतान गोद से छिन जाए, हाय मेरे लाल को कौन बचाएगा? मैं अब उसे नहीं बचा सकती। आग के लपटों उसकी ओर दौड़ी चली आती है। बहन, तुम जाकर उस निर्दयी को समझाओ, अगर अब भी हो सके तो मेरे माया को बचा लो। नहीं, अब तुम्हारे बस की बात नहीं है। यह पिशाच अब किसी की समझाने से न मानेगा, उसने मन में ठान लिया है तो आज ही सब कुछ कर डालेगा। यह कहते कहते वह उठी और खिड़की से नीचे देखा। दीवान खाने के सामने वाले सहन की सफाई हो रही थी, दरियां झाड़ी जा रही थी, उसकी आंखों माया को खोज रही थी। वह माया को अपने हृदय से चिपटाना चाहती थी, माया ने दिखाई दिया। एक क्षण में मोटर सहन में आई, गायत्री और ज्ञानशंकर उस पर बैठे। माया भी एक मिनट में दीवान खाने से निकला और मोटर पर आ बैठा। विद्या ने आतुरता से पुकारा, माया माया यहाँ आओ। लेकिन या तो माया ने सुना ही नहीं या सुनकर ध्यान ही नहीं दिया, और खड़ी पुकारती ही रही और मोटर हवा हो गई। विद्या को ऐसा जान पड़ा मानो पानी में पैर फिसल गए। वह तुरंत पछाड़ खाकर गिर पड़ी, लेकिन श्रद्धा ने संभाल लिया, चोट नहीं आई। थोड़ी देर तक विद्या मूर्छित दशा में पड़ी रही, श्रद्धा उसका सिर गोद में लिए बैठी रोती रही। मैं अपने को यह भाग नहीं समझती थी, इस दुखिया की विपत्ति और भी दुशा है। किसी रीति ने उन्हें यह खबरें होती तो अवश्य गायत्री को समझाते, गायत्री उनका आदर करती है, शायद मान जाती, लेकिन इस महापुरुष के सामने उनकी भेंट भी तो गायत्री से नहीं हो सकती। इस भय से तो घर से बाहर निकल गए हैं कि काम में कोई विघ्न बाधा ना पड़े। कुछ नहीं, अब इसी की भूल है, जो ही मैंने इसी से गोद लेने की बात कही, इसे क्षण भर बाहर जाकर दोनों को फटकारना और माया का हाथ पकड़े खींच लाना चाहिए था। मजाल थे कि मेरे पुत्र को कोई मुझसे छीन लेता। सहसा विद्या ने आंखें खोल दिया, छीण स्वर से बोली, बहन अब क्या होगा?